एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उपन्यास की जिसने काफी हलचल मचाई थी, एल्फ्रीडे येलेनेक का द पियानो टीचर। डी क्लाविया स्पीलर इन 1983 में आया था ये।
हाँ, और येलेनेक को तो 2004 में नोबेल पुरस्कार भी मिला साहित्य का। उनकी लेखनी अब बहुत बेबाक मानी जाती है।
बिल्कुल, समाज का पाखंड, पितृसत्ता, दबे हुए सच, इन सब पर वो सीधी चोट करती हैं। और ये उपन्यास द पियानो टीचर हमें वियना ले जाता है।
वही वियना जिसे हम संगीत और कला का गढ़ मानते हैं, एकदम परिष्कृत शहर।
हाँ, लेकिन येलेनेक हमें उस चमक के पीछे देखने को मजबूर करती हैं। क्या वाकई सब कुछ उतना सुंदर है जितना दिखता है? आज हम इसी की तह में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे ये उपन्यास दमन, नियंत्रण, विकृत इच्छाओं और कला की दुनिया के स्याह पहलुओं को दिखाता है।
बिल्कुल, और कहानी की धुरी हैं एरिका कोहुत, लगभग 40 साल की पियानो टीचर।
वियना कंजर्वेटरी में पढ़ाती हैं ना? काफी सम्मानित लेकिन सख्त।
हाँ, सम्मानित भी, और कह सकते हैं कि छात्रों से डरते भी हैं। उनका जीवन दोहरा है, दिन में एक अनुशासित टीचर, लेकिन रात को वो एक अलग ही कहानी है।
और इस दोहरेपन की जड़ें शायद उनके घर में हैं। सुना है माँ के साथ उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है।
ठीक नहीं, शायद बहुत हल्का शब्द है। एरिका अपनी माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती हैं, और उनका रिश्ता बेहद घुटन भरा है, सहनिर्भर कह सकते हैं।
सहनिर्भर मतलब?
मतलब एक ऐसा रिश्ता जहाँ दोनों एक दूसरे से बुरी तरह चिपके हुए हैं। खासकर माँ का एरिका पर पूरा कब्जा है, वो एक ही बिस्तर पर सोती हैं।
क्या, एक ही बिस्तर पर 40 की उम्र में?
हाँ, और माँ का पूरा कंट्रोल एरिका की जिंदगी पर। क्या पहनेगी, पैसे कैसे खर्च करेगी, यहाँ तक कि उसकी चिट्ठियां तक माँ पहले पढ़ती हैं।
बाप रे।
तो जाहिर है, इस माहौल में एरिका का भावनात्मक और यौनिक विकास ठीक से हो ही नहीं पाया। वो कुंठित हो गई है, जैसे किसी पौधे को बढ़ने ही न दिया गया हो।
ये तो सचमुच एकदम घुंटू तस्वीर है। मतलब बाहर से जो सम्मान है, जो नियंत्रण दिखता है,
वो एक पिंजरा है।
हाँ, एक भावनात्मक कैद। और अक्सर जब इंसान ऐसे फंसता है तो दबी हुई इच्छाएं अजीब रास्ते खोज लेती हैं। नहीं,
बिल्कुल, एरिका के साथ भी यही होता है। दिन का अनुशासन रात में टूट जाता है।
कहाँ जाती हैं वो रात में?
शहर के बदनाम इलाकों में, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स, पीप शो, अडल्ट सिनेमा हॉल, वहां जाती हैं।
लेकिन आनंद के लिए या?
नहीं, आनंद या उत्तेजना के लिए नहीं, बल्कि एक अजीब सी तटस्थता के साथ, जैसे कोई वैज्ञानिक कोई प्रयोग देख रहा हो। वो पार्कों में छिपकर युवा जोड़ों को देखती हैं।
अच्छा, क्यों?
शायद वो समझने की कोशिश कर रही हैं कि ये सामान्य मानवीय जुड़ाव क्या होता है, जो उसकी अपनी जिंदगी में है ही नहीं, वो बस बाहर से देख रही है।
जिंदगी में शामिल हुए बिना और क्या यह सिर्फ दूसरों को देखने तक ही है या खुद को भी नुकसान पहुंचाने वाली बात सच है?
हाँ, वो पहलू शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। वो बाथरूम में अकेले रेजर ब्लेड से खुद को आटती हैं।
ओ,
ये आत्मक्षति, ये शायद उनका एक हताश तरीका है नियंत्रण पाने का, अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से पर।
जब बाकी सब कुछ आपके कंट्रोल में ना हो।
हाँ, तो शायद खुद को दर्द देना ही वो चीज लगती है जो पूरी तरह आपकी अपनी है। एक तरह से ये महसूस करने की कोशिश है कि वो जिंदा है, भले ही वो एहसास दर्द का हो।
ये बहुत मार्मिक और भयानक है। तो ये दूसरों को देखना और खुद को चोट पहुंचाना, ये दोनों गहरे जख्मों के निशान हैं। नियंत्रण की एक ऐसी भयानक तलाश जो खुद को ही मिटाने लगती है।
बिल्कुल, जैसे वो कह रही हो, अगर मैं अपनी खुशी तय नहीं कर सकती तो अपना दर्द तो चुनी सकती हूँ।
और इसी इसी घुटन भरी दुनिया में एंट्री होती है वॉल्टर क्लेमर की।
हाँ, वॉल्टर क्लेमर एक नौजवान, होशियार, आत्मविश्वास से भरा इंजीनियरिंग छात्र, पियानो भी सीखता है।
और वो एरिका से एकदम अलग है।
हर तरह से युवा, ऊर्जावान, सामाजिक, उसमें वो बेफिक्री है जो एरिका की जिंदगी में कभी थी ही नहीं।
तो एक तरफ दमन की मूर्ति एरिका, दूसरी तरफ ये खुला हुआ नौजवान। टकराव तो होना ही था, पर क्लेमर क्यों खिंचता है एरिका की तरफ?
शायद एरिका की बुद्धि, उसकी वो दूरी बनाए रखने वाली पर्सनालिटी और कंजर्वेटरी में उसका रुतबा, क्लेमर इसे एक चुनौती समझता है। वो एरिका का पीछा करता है।
और एरिका, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है?
वो शुरू में तो उसे झिड़कती है, तिरस्कार दिखाती है, लेकिन क्लेमर इसे शायद कोई रोमांटिक खेल समझ लेता है। और एरिका के अंदर भी कुछ तो होता है, तिरस्कार के साथ साथ शायद एक दबी हुई सी उम्मीद, एक खतरनाक उम्मीद।
लेकिन एरिका के लिए सामान्य रिश्ते वो तो नामुमकिन लगते हैं, उसके अंदर की कड़वाहट कैसे बाहर आती है?
बहुत बुरे तरीके से। जब क्लेमर का ध्यान किसी और छात्रा पर जाता है तो एरिका ईर्ष्या से जल उठती है
और
वो उस छात्रा के कोट की जेब में कांच के टुकड़े डाल देती है चुपके से।
क्या, कांच के टुकड़े? बाप रे।
हाँ, ये उसकी दबी हुई हिंसा और नियंत्रण खोने का डर दिखाता है। कितना विकृत हो चुका है उसका भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका।
ये तो सचमुच एक चेतावनी जैसा है। क्लेमर के साथ फिर रिश्ता कैसे बढ़ता है?
क्लेमर शायद समझ नहीं पाता या नजरअंदाज कर देता है। वो पीछा जारी रखता है और तनाव बढ़ता है। एक घटना कंजर्वेटरी के टॉयलेट में होती है।
क्या होता है वहां?
एरिका अचानक वॉल्टर के चेहरे पर थूक देती है और हुक्म देती है कि गुलाम की तरह उसकी बात मानो। फिर एक कॉन्सर्ट में वो उस पर हाथ भी उठा देती है।
ये तो बहुत अजीब और हिंसक है। क्या वो पागल हो रही है या ये कोई सोचा समझा कदम है?
ये सिर्फ गुस्सा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे वो वॉल्टर को अपनी एक फैंटेसी में खींच रही है।
कौन सी फैंटेसी?
एक विकृत फैंटेसी। वो परख रही है कि क्या वॉल्टर वो आक्रामक हावी होने वाली भूमिका निभाएगा जो एरिका चाहती है। वो रिश्ते को अपनी शर्तों पर चलाना चाहती है, अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से।
क्या हाँ, नियंत्रण उसके हाथ में हो, भले ही वो दर्द और अपमान के जरिए हो।
बिल्कुल।
और फिर आता है वो मशहूर पत्र जिसने शायद सब कुछ बदल दिया।
हाँ, वो पत्र। वॉल्टर जब पीछा करता रहता है तो एरिका को शायद लगता है कि वो तैयार है उसके खेल में शामिल होने के लिए।
तो वो क्या करती है?
वो उसे एक लंबा पत्र लिखती है, 4 पन्नों का, टाइप किया हुआ।
प्रेम पत्र?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यौन हिंसा और अपमान का एक विस्तृत ठंडा सा खाका है। निर्देश है इसमें।
निर्देश? कैसे निर्देश?
साफ साफ लिखा है कि वॉल्टर उसे कैसे बांधे, मुंह कैसे बंद करे, कैसे पीटे। इसमें प्यार, कोमलता, आपसी मर्जी ऐसा कुछ नहीं है, बस रीतिबद्ध नियंत्रित यौन उत्पीड़न का एक मैनिफेस्टो।
ये पत्र तो एरिका की पूरी मानसिक स्थिति का आईना है। एक तरफ तो ये नियंत्रण पाने की उसकी चरम कोशिश है।
हाँ, अपनी सबसे गहरी शर्मनाक इच्छाओं को एक स्क्रिप्ट में बांध देना।
और दूसरी तरफ ये दिखाता है कि वो सामान्य मानवीय रिश्ते बनाने में कितनी अक्षम है। उसे इंसान नहीं, एक पात्र चाहिए जो उसकी स्क्रिप्ट फॉलो करे।
बिल्कुल, प्यार नहीं, सिर्फ आज्ञाकारिता।
लेकिन वॉल्टर की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या वो ये स्क्रिप्ट फॉलो करता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पत्र पढ़कर डर जाता है, उसे घिन आती है।
घिन?
हाँ, वो इसे कोई खेल नहीं समझता, बल्कि एक बीमार मानसिकता का सबूत मानता है। हिंसा का एक ठंडा प्रेमहीन दस्तावेज। और वो एरिका से कहता है, तुम बीमार हो, तुम्हें मदद चाहिए।
और ये अस्वीकृति, ये एरिका के लिए कैसा रहा होगा? उसने अपनी आत्मा का सबसे कमजोर हिस्सा खोला और उसे टुकरा दिया गया, बीमार कहा गया।
ये शायद उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। उसकी वो पूरी दुनिया, वो फैंटेसी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नियंत्रण पूरी तरह छिन गया।
यहां से कहानी और भी अंधेरी हो जाती है ना? वॉल्टर फिर वापस आता है।
हाँ, कुछ समय बाद। लेकिन इस बार वो एरिका की फैंटेसी पूरी करने नहीं आता।
तो क्यों आता है?
शायद अपने घायल अहंकार के कारण, गुस्से में, एक अजीब सी विकृत जिज्ञासा के साथ।
एरिका शायद उम्मीद करती है कि वो उसकी स्क्रिप्ट मानेगा, लेकिन होता कुछ और है।
क्या होता है?
वॉल्टर दरवाजे पर माँ को धक्का देता है, अंदर घुसता है और एरिका पर वैशी हमला करता है।
हमला? मतलब?
वो उसका बलात्कार करता है, उसे बेरहमी से पीटता है। लेकिन ये वो हिंसा नहीं है जो एरिका ने मांगी थी। ये नियंत्रित अपमान नहीं है,
तो फिर?
ये अराजक, भद्दी, क्रूर हिंसा है जिसका मकसद सिर्फ एरिका को तोड़ना है, अपना दबदबा दिखाना है। और सबसे क्रूर बात, वो हमला करते हुए उसके पत्र के निर्देशों का मजाक उड़ाता है,
हो,
उसी की फैंटेसी को हथियार बना लेता है।
हाँ,
ये तो एरिका की दुनिया का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। उसने अपनी शर्तों पर अधीनता चाही थी, एक नाटक, पर उसे मिली असल जिंदगी की बेलगाम वहशी हिंसा।
बिल्कुल।
यहाँ येलेनेक शायद पितृसत्ता की क्रूर सच्चाई दिखा रही है कि पुरुष का वर्चस्व किसी स्क्रिप्ट का मोहताज नहीं। एरिका का वो मनोवैज्ञानिक खेल, नियंत्रण का भ्रम, वो असली शारीरिक हिंसा के सामने टिक नहीं पाता,
एकदम रेत के महल की तरह रह जाता है।
और उपन्यास का अंत वो भी उतना ही निराशाजनक है।
हाँ, अगले दिन एरिका शारीरिक और भावनात्मक रूप से टूटी हुई, वो अपने पर्स में एक चाकू रखती है।
चाकू?
हाँ, और कंजर्वेटरी जाती है। शायद वॉल्टर का सामना करने के इरादे से।
क्या वो कर पाती है सामना?
नहीं, वो वॉल्टर को हॉल में देखती है अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
और एरिका?
उसे देखकर एरिका को अपनी बेबसी का, अपनी लाचारी का भयानक एहसास होता है। वो समझ जाती है कि वो अकेली है, उसका दर्द, उसका अपमान वॉल्टर के लिए कुछ भी नहीं। वो हिम्मत नहीं जुटा पाती।
तो फिर उस चाकू का क्या होता है?
वो कंजर्वेटरी से बाहर आती है, सड़क पर खड़ी होती है, वही इमारत जिसने उसकी पूरी जिंदगी को कैद किया, और फिर वो चाकू निकालती है
और
खुद को कंधे में मार लेती है।
क्या?
लेकिन
जानलेवा नहीं?
नहीं, घाव जानलेवा नहीं है, ये बस आत्म नुकसान का एक आखिरी दयनीय सा इशारा है, एक स्वीकारोक्ति कि वो हार चुकी है।
और उपन्यास वही खत्म। एरिका का क्या हुआ आगे?
उपन्यास बस एरिका को कंजर्वेटरी से दूर अपने घर की तरफ वापस जाते हुए दिखाता है, अकेली, हमेशा के लिए टूटी हुई, कोई समाधान नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक ठंडी निराशाजनक तस्वीर।
सच में ये कहानी तो बहुत बेचैन कर देती है। तो येलेनेक इसके जरिए किन बड़े मुद्दों की तरफ इशारा कर रही हैं? पितृसत्ता तो साफ है।
हाँ, पितृसत्ता जो स्त्री की पहचान और यौनिकता को कुचल देती है। एरिका की ये विकृत इच्छाएं या आत्मविनाश, ये कहीं ना कहीं समाज के दमन और पाखंड का नतीजा लगती हैं।
और माँ बेटी का वो रिश्ता?
वो भयानक रिश्ता, वो दिखाता है कि कैसे प्यार के नाम पर थोपा गया नियंत्रण और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला आघात जिंदगी तबाह कर सकता है। माँ का प्यार यहाँ जहर बन गया है।
और कला, संगीत, वियना तो संगीत का शहर है, क्या कला कोई राहत नहीं देती?
यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, यहाँ कला मुक्ति नहीं देती। संगीत एरिका के लिए कठोर अनुशासन है, प्रतिस्पर्धा है, यहाँ तक कि यातना का जरिया है।
अच्छा,
हाँ, कंजर्वेटरी भी कोई पवित्र जगह नहीं है, वो एक बांझ दमनकारी संस्था लगती है। उपन्यास जैसे कह रहा है कि कला भी सत्ता की उन्हीं ढांचों का हिस्सा हो सकती है जो इंसान को कुचलते हैं।
ये तो वियना के उस सभ्य समाज पर भी तीखा कटाक्ष है।
बिल्कुल, उस चमकीले लिबास के नीचे छिपी क्रूरता और पाखंड पर।
येलेनिक की लिखने की शैली भी बहुत अलग बताई जाती है। वो कैसे लिखती हैं इन भयानक चीजों के बारे में?
उनकी शैली भी कहानी जितनी ही असहज है। वो एक तरह की तटस्थ, लगभग वैज्ञानिक भाषा इस्तेमाल करती हैं, जिसे नैदानिक या क्लिनिकल कह सकते हैं।
क्लिनिकल?
जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देख रहा हो बिना किसी भावना के। वो एरिका के सबसे विचलित करने वाले विचारों और कामों का ब्यौरा देती हैं, पर एक दूरी बनाए रखती हैं। भाषा बहुत सघन है, बौद्धिक है,
और कभी कभी चौंकाने वाली भी।
हाँ, वो अक्सर बहुत घिनौनी या हिंसा घटनाओं के लिए भी बहुत परिष्कृत साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करती हैं। इससे एक अजीब सा तनाव पैदा होता है।
प्रतीक भी हैं क्या उपन्यास में, सिंबल्स?
हाँ, बहुत सारे। पियानो खुद एक प्रतीक है, अनुशासन का, पर एरिका की कैद का भी। कंजर्वेटरी उस दमनकारी सिस्टम का, रेजर ब्लेड नियंत्रण पाने की उस विकृत इच्छा का, और वो अपार्टमेंट, माँ के साथ वो घुटन भरा रिश्ता जो एक गर्व भी है और कब्र भी।
कहानी कहने का तरीका भी थोड़ा बिखरावा सा है।
हाँ, थोड़ा खंडित है, जो शायद एरिका की टूटी हुई मानसिकता को ही दिखाता है।
तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा उपन्यास है जो पाठक को चैन से बैठने नहीं देता। इसे पढ़ना आसान नहीं है।
यकीनन, ये कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है, पाठक को झकझोड़ती है, असहज करती है। येलेनेक कोई आसान जवाब नहीं देती, वो बस समाज और मन के अंधेरे कोनों को बेरहमी से दिखाती हैं।
लेकिन असर गहरा होता है।
हाँ, बहुत गहरा। यह हमें सत्ता, सेक्स, सहमति, कला की भूमिका और सभ्यता के नकाब के पीछे छिपी हिंसा पर सोचने को मजबूर करता है। इसे पढ़ने के बाद शायद रिश्ते, समाज, कला, इन सब को देखने का नजरिया बदल जाए।
तो अंत में अगर हम एक पंक्ति में सोचें, ये भयानक कहानी हमें क्या सिखाती है?
शायद यही कि दमन कितना विनाशकारी हो सकता है, कैसे बाहरी दबाव इंसान को अंदर से तोड़ सकता है, उसे आत्मविनाश की ओर धकेल सकता है।
एरिका की त्रासदी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी सिस्टम्स की विफलता है जिन्होंने उसे ऐसा बनाया।
बिल्कुल।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।